आप तो बतला ही देंगे कहाँ तक हुआ था, बतलाइए कहाँ तक हुआ था, भागवत हुआ था ना क्या हुआ था? नहीं नहीं, यहाँ पर कौन सा पुस्तक पाठ हो रहा था आपको पता ही नहीं है? अरे पुस्तक कौन सी, भागवत था या क्या था, वेदांत था? हाँ ठीक, कत दूर है चले रे, नोट आछे তারপরে রোহিণীর কথা হয়ে গেছে, তারপরে বলদেবের কথা হয়ে গেছে। रोहिणी मैया ने कृष्ण को निष्ठुर बतलाया तो रुक्मिणी और सत्यभामा ने उसका खंडन किया और उसके बाद में ने अपने हाथों से पत्र लिखा, ये तो बतलाया था ना, हाथों से पत्र लिखते हैं तो ये बनवासियों, मैं बहुत जल्दी से जो मैंने आरंभ किया काजे शत्रुओं का विनाश कर और जादुओं को संतुष्ट कर, मैं अभी शिकली आई गया ब्रज में, ऐसा ही समझ इस प्रकार से प्रेम पत्र लिखा गया। जब उद्धव जी ने देखा कृष्ण का भी प्राय केवल वो चिट्ठी उद्धव के द्वारा भेज देना है, बड़े दुख के साथ में रोदन करने लगे, क्योंकि उद्धव जी ब्रजवासियों के मन के भावों को जानते हैं। उद्धव जी ने कहा हे प्रभो, हमने निश्चय किया है कि आप ब्रज में गए बिना ब्रजवासियों के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती, वो कुछ भी नहीं चाहते, इसको सुनकर के परीक्षित महाराज जी का है। इसी समय में पद्मावती कंस की माता हंसती हुई और सिर कंपन करती हुई, ये हो गया। अरे देवकी, मैं खूब अच्छी तरह से समझ रही हूँ, ऋषि के बाद से संहार। उद्धव जी ब्रज में बहुत दिनों तक वास किया और ब्रजवासियों का गोरस मक्खन इत्यादि खाया और खिला करके ब्रजवासियों ने उद्धव जी को वशीभूत कर रखा, इसलिए तुम्हारे पुत्र को उद्धव की सहायता से पुनराय ब्रज में ले जाएंगे और वहां दुर्गम वन में जंतुओं से भरे हुए, हिंसक प्राणियों से भरे हुए कंटक मन ने तुम्हारे पुत्र को गोचारण के लिए भेजे, ये भी हो गया था। परीक्षित जी ने कहा, कंस की मैया की यह बात सुनकर कृष्ण सत्य नहीं कर सके, और साथ-साथ यशोदा के प्रिय सखी राम जननी राम की माता की क्रोधित होकर के कहने लगी। ये भी हो गया था नहीं? वही तक हुआ, उन लोग की बताइए तो कोई कुछ शब्द ही नहीं कर रहे। रोणी जी ने कहा, अरे कंस की मैया, क्या ब्रजवासी लोग गो रक्षा के लिए ही दुर्गम वन में गैया चराने के लिए ही उन लोगों को कृष्ण में कृष्ण को बुलाती कृष्ण को लगाती हैं? वे तो कृष्ण को एक क्षण नहीं देखने से जीवन धारण भी नहीं कर सकते। और भी बोली, कैसे एक क्षण नहीं देखने से सखा लोग क्या करते हैं? पेड़ों की आड़ में यदि कृष्ण हो जाते हैं एक क्षण के लिए तो खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण अरे भैया कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। जबकि ब्रज में ब्रज से कृष्ण मथुरा में आए तो नंद बाबा सब सखाओं को भी ले आए थे, सखा लोग आए थे सुबह से दान और मंगल इत्यादि लोग यहाँ पर आए थे, कृष्ण को छोड़कर क्या नहीं रह सकते। गोपियां तो किसी प्रकार से वृंदावन में रह गए, किंतु ये लोग नहीं रहे। अरे हे सती, ये उसको काउंटिंग कर रही है, हे सखी सती, अर्थात तुम असती हो। यदि कुछ वृक्ष का व्यवधान हो जाता, छिप जाते कृष्ण एक पेड़ के नीचे, तो हे कृष्ण तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ। जोर से उच्चारण पूर्वक वो रोने लगते थे, जब तक कृष्ण नहीं मिल जाते तब तक वो उनको ढूंढते रहे। एक ही मात्र दिन भी कृष्ण के दर्शन में उनको प्रलय के समान मालूम होता है, और एक लौ भी समय उनके लिए चतुर्युग के समान लंबा सा दिखता है, युगायतम निमेश अथवा अटत जब भवान अन्य कामिनम युगायते माम तपस्य। त्रुटि युग आए थे, एक त्रुटि मैंने पलक गिरने का समय भी, युग आयतम मानो करोड़ों युग बीत रहे हैं कृष्ण के बीच। क्यों ऐसा होता है, बिना किसको अनुभूति होती है, जिसको जिसके प्रति जितनी ममता है उसके लिए उसको उतनी ही विरह, और जिसको ममता नहीं है उसके लिए विरह नहीं। तो कृष्ण के प्रति इनों की ममता है तो अधिक, इसलिए इनके विरह में रह नहीं सकते। इनके विरह में दुखित हैं सखा लोग, किंतु यशोदा जैसे रोते 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 अंधी हो गई ऐसा नहीं संभव, और गोपियां जैसे पागल हो गई दिव्योन्माद इत्यादि हो गया, वो यशोदा मैया और नंद बाबा भी को नहीं, यहां तक कि ललिता विशाखा को भी उतना विरह नहीं होगा जितना राधिका जी को है, ये सब ममता। जिसको गुरु के प्रति ममता नहीं है तो उनके लिए गुरु के लिए भी निरंजन। Those who have no minus to guru, no bira for Gurudev. Similarly, if no mamata to Krishna, no bira at all. तो गुरु के प्रति कैसे ममता हो, पहले ये हो। वैष्णव के प्रति ममता हो, शिक्षा गुरु के प्रति ममता हो, तब तो कृष्ण के प्रति हो सकती है। ममता में कुछ और भी, यदि किसी से हमको लाभ है, अभी प्राप्ति योग है, तो उसके लिए भी कुछ ममता होती है, किंतु वह स्वार्थ है, स्वार्थ युक्त है। और जिस ममता में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल आंतरिक प्रीति है, उसमें विरह अधिक होता है। गोप गोपियों का, ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति निस्वार्थ ममता है, इसलिए उनको विरह का दुख भी होता है। और वे लोग जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो जब लौट करके आते हैं दोपहर से उनकी प्रतीक्षा में लग जाते हैं कि कृष्ण कब आएंगे, और उसको कैसे निश्चित करते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं। गायन को फिर से धूली आकाश में उड़ती है, या सिंगा और बंसी जब बजने लगती है तो मुरली को, या मुरली का साउंड सुन करके वो समझ जाते हैं कि अब कृष्ण आ रहे हैं। अब समय घर में कोई भी नहीं रहा, घर के बाहर सभी लोग खड़े। ये है, मन कहते हैं कि उन्मत्त दशा को प्राप्त हो जाती है। ये ब्रजवासी होगा स्वाभाविक हृदय से प्रेम। इस जगत में प्रेम नहीं है, काल के प्रभाव से वो प्रेम ट्रेम सब कुछ भूल जाते हैं, यहां तक कि गुरु के विरोधी भी बन सकते हैं। इसलिए जिसके जितना उपकार किया उपकारों को भी वो भूल सकते हैं। अपराकृत जगत में ऐसा नहीं है, दूर हो जाएंगे किंतु तो भूल नहीं सकते। फुल स्पीड कैन यू नो
So, we're just continuing on, Sri Guru Maharaj, continuing on from Sri Brihad Bhagavatamrita. So just catching up a little bit so we can understand and remember where we are. So, Rohini is, in conclusion, oh, Krishna is very cruel-hearted. So Rukmini and Satyabhama denied, no, his heart is very soft. So in the end, what to do? Krishna asked to Uddhav, what is the situation? How can I remedy the situation for the suffering of Brijbasis? So the conclusion was, Krishna thought I should write a letter to the Brijbasis. So the conclusion was that Krishna will write a sandesh, a message to the Brijbasis. So that message should be, O most beloved Brijbasis, now I have some responsibilities here in Mathura. I have to finish off so many demons like Jarasandha. I also have to satisfy the Yadu dynasty. So after I've done all this, then I will come very, very quickly. So when Uddhav heard that again Uddhav will be sent to Vrindavan, Uddhav said, this is quite absurd. There is no other remedy except for you to personally go to Vrindavan, because the Brijbasis do not want anything else in this world or the next world. All they want is your lotus feet again in Vrindavan. So Uddhav, he knows the hearts of Brijbasis because he spent 3 months there and he was eating all the prasadam given by the Brijbasis. Therefore, he was completely controlled by the prem of Brijbasis. So, how much the Sakas love Krishna? If Krishna disappears behind a tree even for one kshan, 1/11th of a second, that time the Sakas cried bitterly, Oh Krishna, Oh Krishna. The Sakas have so much affection for Krishna, they could not leave him. So when Nanda took Krishna and Balaram to Mathura, all the Sakas like Shudam, Subal and Madamangal also went with him. So 1 second of separation without Krishna is like a pralaya, a destruction. 1 second without darshan of Krishna, this is like one chaturyu, so many hundreds of thousands of years. But who can experience this vidaha, this separation? Only one who has mamata. That means a feeling of possessiveness towards Krishna. Oh, Krishna is mine. So the Sakas, they have so much mamata for Krishna, therefore they feel so much separation. But their separation is not like the separation of Mother Yasoda. Her separation is so vast that she is weeping, weeping, she has become blind. Such a situation. But the Gopi separation is even more than Mother Yasoda. They become quite transcendently mad, divya mad. So what to speak of all the Gopis, Lalita and Vishaka have more separation than anyone, and even more than them, what to speak of the condition of Srimati Radhika. So first this mamata must come to Gurudev and the Vaishnavas. Because in this world there is no prem. So first we have to make that relation with Guru and Vaishnavas. Then it can come for Krishna. So, in this there should be no swat, no self-interest at all. Then that mamata will be pure, and then we will experience viraha as a result of that mamata. How are the gopis are? That time when Krishna goes for cow grazing, the gopis are feeling so much separation, and how their separation will be mitigated? Only when they see some symptoms that Krishna is returning. For example, in the distance they see some dust thrown by the cows. They hear the sound of Krishna's venu. They hear the shingha, the sound of Krishna, of the horn. That time all the Brijbasis have so much mamata for Krishna. No one stays in the house. Everyone comes out on the path to see Krishna. So this is swabhavik prem, very natural. Not artificial at all. But now we see these days, due to the influence of time, there is no prem at all. There is only self-interest. What to speak of having prem? Even these days, we have no real affection for the Guru. And in time, as time passes, even some people become against the Guru. So the conclusion is, in this world there is no prem, that prem is only there in the spiritual world.
Gopiyan. और ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति निस्वार्थ इतना प्रेम है जो क्षण भर भी उनको देखे बिना जीवन धारण नहीं कर सकते। भला वो कृष्ण को दुर्गम वन में हिंसक पशु जहाँ हैं जंतु हैं वहाँ पर गोपियाँ भेजती हैं ये कभी संभव नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं तो वन में क्यों जाते हैं कृष्ण गायों के साथ में? गैया को चराने के लिए नहीं जाते, किस लिए जाते हैं? कृष्ण बड़े कौतूहली है। कौतूहली मैंने क्या, बड़े रस के समुद्र हैं, वृंदावन रमणीय स्थान है, उसमें भ्रमण या विहार करने के छल से करने के लिए गोचारण का एक बहाना बनाते हैं और सखाओं के साथ में बलदेव जी के साथ में नित्य बंध बन। वृंदावन रमणीय कैसे है, जयत जयत वृंदारण्य में तन मुरारे प्रियतम अति साध शांत वैकुंठ सभासाद रम्य स सता का पालयन जत्र गोपी सरित मधुर वेणु वर्धयन आनंद बिंद परितुंजलि मिंदिराया आनंद बिंद परिनंदित नंद पुत्र गोविंद सुंदर वधु परिनंदित वृंदावनम मधुर मुर जयति जयति वृंदारण्य में तन मुरारी। ये मुरारी का वृंदावन की जय हो। कैसे, वैकुंठ की अपेक्षा भी वृंदावन में रहना साधु अर्थात सौभाग्य की बात है। यहां पर कृष्ण वेणु बजाते हैं, सुंदर गायों को चराते हैं और उसे गोपियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे कृष्ण यहां पर की गोपियां इत्यादि हैं जो प्रेम रस की आधार है, वो वृंदावन का वृंदावन जो कृष्ण मुरारी का जो वृंदावन है वो जय जय कृष्ण। वहां रमणीय कहने का तात्पर्य क्या है, रमण करने जो ये परब्रह्म कृष्ण रसिक वर कृष्ण इनके लिए रमणीय स्थान द्वारका नहीं है, मथुरा नहीं है। यहाँ पर सुंदर सुंदर बेली चमेली जूही सब प्रकार के फूल हैं, ऐसा कोई पुष्प नहीं जो न हो। षड ऋतुओं में जो सारे जो फूल हैं वो सब एक साथ में, यहाँ पर सदैव बसंत ऋतु है। भ्रमर गुंजार करते हैं और कोयल सब समय कुहू कुहू करती है, मयूर आकाश को देख करके मेघ को देख करके मानो नृत्य करने लगते हैं, केका शब्द करने लगते हैं। जमुना जी बड़ी सुंदर निर्मल पानी के साथ में चारों ओर बहती है, मानो चारों तरफ से वो घेर करके रखी। जहां पर जमुना का बालू कैसा है, स्वच्छ जैसे कपूर से जैसा स्वच्छ सुशीतल, वहां पर जमुना का तट प्रदेश है। गाय को खाने के लिए घासों से भरा है, गाय एक जगह चर करके अघा जाती है। वहां पर कोई हिंस जंतु नहीं है, वहां पर बाघ टागे नहीं है, गाय हैं, मृग हैं, ऐसे से ऐसे सब जो वृंदावन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे पशु पक्षी जो जिनका कृष्ण से अत्यंत प्रेम है, कृष्ण भी उनको प्रेम करते हैं। जब कृष्ण वृंदावन में पधारते हैं तो पशु पक्षी सब उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, मयूर आ जाते हैं, कोयल आ जाती है, जितने मृग इत्यादि आ जाते हैं और कृष्ण उस समय उन लोगों को बुलाने के लिए अपनी बंसी पर वो बंसी बजाने लगते। इस प्रकार से वृंदावन में भ्रमण करने के लिए गोचारण के लिए नहीं जाते, वहां पर कोई हिंस बस जानवर नहीं है तो गायों को डर नहीं है, वो तो जाकर के अपने आप चर करके आ सकती थी, किंतु नहीं, कृष्ण उसी के बहाने में जाते हैं। गोचारण करने के बहाने से वृंदावन में किस लिए, सखाओं को भी साथ लेते हैं, बलदेव जी को किस लिए, बहाना के लिए। असल उनका मकसद क्या है, तात्पर्य क्या है, प्रेममयी जो गोपियां हैं उनके हृदय में रमण करने वाली जो गोपियां हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनसे विहार करने के लिए जाते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड भंडील वन में जाते हैं, यहाँ पर की गोपियां, इसलिए वो बहाना बनाते हैं केवल। तथा महाश्चर्य चरित्र विचित्रतामयी कालिंदी कालिंदी जा ब्रजभूमि संगिनी तथा विधा विंध्य नगादि संभव संभवा पराश्र नद्यो विलसन। यहाँ पर की कुसुम सरोवर, मनसी गंगा, पामन सरोवर, न जाने कितनी सरोवर, और उसमें हवा पानी से उसमें तरंगे आती हैं, उसमें भ्रमर सब तैरते हैं काले काले, और हंस और कारंड इत्यादि उसमें विचरण करके विचरण करते रहते हैं, और पानी अत्यंत तो स्वच्छ निर्मल जिसको गाय भी पीती हैं, कृष्ण भी पीते हैं, सखा लोग स्नान करते हैं, उसमें विहार करते हैं। उसमें जबकि वो विहार करते हैं, तैरते हैं कृष्ण सखाओं के साथ, सखियों के सहित, तो उसमें जो कमल है उत्पल वो भी हिले उरे नेले डरते हैं, वो है ना। इसके लिए वहां पर सुंदर भिनी भिनी सुगंध रहती है, मानो वहां की हवा फूलों का सौरभ ग्रहण करके भार से चल नहीं पाता है, लड़खड़ा करके चलने लगता है, ऐसा वृंदावन रमणीय। वृंदावन में और तो फूल पुष्प तो ही है, पेड़ भी हैं, किंतु वृंदावन में वृंदा जी की प्रधानता है, और वृंदा जी के मंजरियों में इतना मधु है जो और कहीं नहीं है। उनके मंजरियों पर मधुमक्खियां बैठती हैं, भ्रमर बैठते हैं, हाँ और की तो बात क्या कहूं। तथा पिता और भी जमुना जी के साथ में वृंदावन की संगनी जमुना है, बड़ी मुश्किल से वो जमुनत्री से वो आकर के किस लिए आती है वृंदावन के, और टेढ़ी मेढ़ी से बह करके जाना नहीं चाहती, और जब जाती हैं तो मूर्छित होकर के जाती हैं, कैसे उसमें फिर धारा प्रवाह नहीं रहता इसके बाद, और जब मिलती है ना तो एकदम एकदम जैसे थकी हुई कोई व्यक्ति, थका हुआ कोई व्यक्ति है, ऐसे हो जाती है। कृष्ण के विरह में वृंदावन के विरह में यहाँ पर थी, और पर्वत कौन, विंध्य पर्वत आदि शंभू उनसे निकली हुई विंध्या पर्वती थे, खुद्र खुद्र नदियां, ये सरस्वती एक धारा थी जो मथुरा में मिलती है, वो वृंदावन होकर के नाना प्रकार के वनों में होकर के आती है, जमुनावती में जमुना जी बहती हैं, इस प्रकार से वृंदावन की शोभा अद्भुत है, निराली है। कृष्ण उसमें विचरण करने के लिए, विहार करने के लिए, और विशेष करके गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं।
Is completely niswat without any type of self-interest at all. So why is Krishna going to the forest? Is he going for cow grazing? No, not at all. This is only one excuse, bahana, because Krishna is very kaltahani, kaltahari. He is very anxious to taste what is the prem bhakti ras. Therefore, the adar, or the resting place of this bhakti ras, is who? All the brijvasis, the sakas, and the gopis. Therefore, Krishna not going cow grazing, this is only an excuse to enjoy pastimes with the sakas, and to enjoy and see the sova, the beauty of Vrindavan, and of course to meet with the gopis. As Sri Sanatana Goswami Pad describing Brij Bhagavatamrita, Jayati Jayati Vrindavan Namritam Murari Priyatman Anusaru Santa Vaikuntha Vasa Ramayati Sasada Go So there, what is Ramayati? Ramayati, how many gopis? So Śrīla Sanatana Goswami beautifully describing the beauty of Vrindavan. So all glory to that Vrindavan. Where Krishna is always moving here and there, playing his flute, giving happiness to all the cows, all the sakas and all the gopis by playing his bansi. And by that bansi, he is expanding the prema rasa in the hearts of all his devotees, especially the gopis. So the Ramayati described here in this verse, this refers only to the gopis, because the gopis cannot be found anywhere else, only found in Dwarka and Mathura. Cannot be found anywhere, they can only be found in Vrindavan, nowhere else, not in Dwarka or Mathura. Because there Vrindavan is so much beautiful. There are all types of flowers fully blossoming at all times. All six seasons fully present there in Vrindavan. So the bees are moving there in swarms. The cuckoos are sweetly chirping, cuckoo. The Yamuna is very beautiful. And the water there is very swacha, means pure and cooling.
Transparent.
Like transparent. There is grass covering all 10 directions. So therefore the cows don't have to go anywhere. For cow grazing, grass is always present. There is no envy or any type of jealousy in that Rajamandal. There is no type of dangerous animals. There are only animals like deers and rabbits. So they are all decorating that Vrindavan Dham. So when Krishna goes for cow grazing, that time all these animals, like the cows, the deers, the rabbits, and the birds, all surround Krishna on all four sides. And Krishna attracting them and giving happiness to them by playing his veena again and again. So where is the question? Necessity of Krishna going cow grazing? Because there are no dangerous animals there. So no need for Krishna to go at all. So this is just an excuse. So much grass is there, the cows, no need anyone to take them from here to there. The cows can go independently. So there are many, many kuns and sarovas there, like Radha Kun, Sham Kun, Kusum Sarova, Manasi Ganga. So all these kuns are very, very beautiful and attractive. They have many, many waves gently flapping. Many, many bees moving here and there. Wonderful birds like swans are floating very happily on the water of those sarovas. That water is so pure that Krishna, the sakas, and all the cows drink from that water very freely. There is many, many types of flowers, especially lotuses on that sarova, like Kusumita Sarova. There on Kusum Sarova, many, many lotus flowers are there. So even that place is so wonderful, even the breeze becomes intoxicated. So much pollen is there. That's why the breeze moves from side to side, like an intoxicated person. So the manjaris have so much sweetness there, the bees never leave those manjaris and always stay there. So Yamuna is also very sweet. She is also attracted to Vrindavan. That's why she doesn't want to move out of Vrindavan. So she moves in a very crooked way and very slowly. And who is doing all this? Vrinda Devi is arranging everything. So there are so many wonderful things like mountains, like Govardhan. So here Sanatana Goswami is describing. So Krishna is to enjoy all these things. Therefore Krishna uses cow grazing as an excuse to see all the wonders and so forth of Vrindavan.
Tatam komal balu pahachita Aramyam sada nutan sad balap pritam. नदियों के तट जमुना नदी का तट या मानसी गंगा नदी थी उसका तट सरस्वती इत्यादि के जो तट विशेष करके जमुना बड़े स्वच्छ निर्मल बालुका से चारों तरफ में खड़े समुद्र के तट पर जाएंगे तो कड़े बड़े बड़े बालू मिलेंगे और नदियां भी पहाड़ी नदियां इधर उधर की है वहां पर भी मिलेंगे कंकड़ इत्यादि मिलेंगे किंतु जमुना का एकदम सुशीतल स्वच्छ वायु का, उसमें सुगंध है। और नौ तीनों से भरा हुआ उनका तट है, दोनों तरफ बड़े सुंदर तरह तरह के फूल फल वृक्ष इत्यादि हैं, कदम इत्यादि तमाल के वृक्ष हैं। स्वाभाविक रूप में उनका निर्मल सुगंध चारों तरफ में फैलता रहता है। और वेश विवर्जित पशु पक्षी वहां हैं, सांप और नेवला, बाघ और हिरण, सब एक साथ में भी चल, कोई द्वेष नहीं है। है तो नहीं किंतु कह रहे हैं यदि कोई हिंसा प्राणी भी है तो हिंसा प्रति उनमें नहीं है, सभी प्रेम के साथ में कृष्ण की बंसी सुनकर के एक ही साथ में वहां पर उपस्थित होते हैं। अधिक क्या कहूं, नाना प्रकार के मृग और पक्षी समूह से यह परिपूर्ण है। इसमें पक्षी भी कैसे होते हैं, एक कृष्ण पक्षी है, एक राधा पक्षी, तोता कृष्ण पक्षी हरा वाला, कृष्ण श्याम हरे हैं ना, इसलिए वो तोता लाल उसके हो, वो मनुष्य की बोली बोल सकता है। और मैना क्या करती है, वो मनुष्य का बोली, वो भी उसकी बोली और मधुर होती है तोते से भी। मनुष्य जैसा जो कोई बोलेगा ठीक वैसा अनुकरण करता है। तोता कह रहा है कि कृष्ण बड़े सुंदर है, और मैंने कहते यदि राधा जी के साथ में है तो सुंदर है, तो सुंदर है। ठीक और क्या, हाँ कृष्ण तोता कहता है ये हमारे कृष्ण मदन को भी मोहित करने वाले हैं, तो वो कहते हैं यदि राधा ना रहे तो केवल मदन ही है वो, इसलिए कृष्ण राधा जी के साथ में ही सब कुछ है। और तोता कहता है ये कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, और सारी मैना कहती है क्या यदि राधा जी अपनी शक्ति नहीं संचालित करती तो कृष्ण कैसे उठा सकते थे, यदि राधा जी की शक्ति नहीं होती तो उठा नहीं सकते थे। और तोता कहता है हमारे कृष्ण के सिर के ऊपर में मयूर पंख है, तो जानते हो ये किस लिए है, उसमें राधा जी का नाम लिखा है इसलिए, नहीं तो कौन उसको कारण। तोता कहता है कृष्ण का मयूर मुकुट बाएं तरफ में ऐसे झुका है, तो मैना कहती है जो वो इसलिए झुकी है जो कृष्ण के राधा जी के चरणों पर वो गिरे। इसी प्रकार से जो तोता कहता है मैना काट देती है, और जैसे कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं वो राधा जी काटते हैं। कैसे काटती हैं, कृष्ण कहते हैं कवाड़ खोलो, कौन है, कृष्ण हूं, अरे कृष्ण है तो सर्प है तो यहां पर आने की जरूरत है, डसेगा पंच जंगल में, अरे कृष्ण ही मैं हरी हूं, अरे हरी हरी तो सिंह को कहते हैं, तो सिंह आते हैं यहां पर क्या हम लोगों को काटने के लिए खाने के लिए आए, अरे वो मैं सिंह नहीं हूं मैं चक्री हूं, हाँ श्री मैं हरी हूं, ओ श्रीहरी, अरे बंदर की क्या जरूरत है, मुख नोचेगा जाओ बंगल जंगल। तो जो जो कुछ कृष्ण कहते हैं राधा जी काट देती है, ऐसे उनकी पली हुई पोषित जो मैना है, जो कृष्ण के द्वारा पालित सुख है उनके समस्त वो खंडन कर दिया। ऐसे ऐसे सब सुनने के लिए जाते हैं कृष्ण, याद करना माने यही सब सुनते हैं और बड़े खुश होते हैं। ये है रमण, वृंदावन में रमण गैया चराने के लिए नहीं जाते, ये तो बहाना मात्र है। और
दिव्य पुष्प फल पल्लवावली हार नम्रता लता तरु गुलमयी भूषितम मदकलापी कोकिल श्रोणी नादितम जंतु पतिपात्र। दिव्य दिव्य फल और पुष्पों से और नए नए पल्लवों से वृक्ष और लताएं मानो नीचे की तरफ में झूम गए। लताएं तो झुकी जाती हैं, पेड़ भी जब आम के फलों से पेड़ लद जाता है उसकी डालियां और ऊपर से नीचे झुक जाती है। लताएं जो ऊपर चढ़ रही हैं जब पुष्पों से एकदम लद जाती हैं तो भी नीचे आ जाती हैं। इस प्रकार से लताओं से और वृक्षों से विभूषित वृंदावन है। वहां पर मदमत्त मयूर और कोकिल अपने करड़ों से मीठी मीठी बोली से वृंदावन को सब समय मुखर करती है। यह वृंदावन परम रमणीय होने से ब्रह्मातीत देवताओं के लिए भी स्तुति का विषय हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं जहां तहां हमारा जन्म, जहां भी ब्रज मिले और तदगुरी भाग्यमी हम जन्म किमा पतव्यम जदगोपी। वृंदावन में हमारा जन्म हो कीट पशु पक्षी किसी भी रूप में, यदि वहां पर किसी कारण से न हो तो हमारा जन्म कहाँ हो, गोकुल में भी हो जाए जहां पर कि मैला कमाने वाली जमादार हैं उनके चरण रगड़ने के लिए मैं पत्थर बनकर गया इस वृंदावन। इतनी दुर्लभ वृंदावन वस्तु है। तो इस तरह से वृंदावन में ब्रज भूमि गमन तत्र गोवर्धने वा नास्ते सिंहा अहरणम रहिते रक्षका उपेक्षा। अरे जब वहां पर हिंस जंतु नहीं है तो रक्षक की क्या जरूरत है, इसलिए कृष्ण को गोचार की जरूरत नहीं है, उनका ये बहाना मात्र है। गाय अपने आप जाती हैं चर करके लौट आती है, केवल ये कृष्ण का बहाना मात्र।
Describing Yamuna and other sarovars like Manasiganga and Kusum Sarova. There, not only is the water very pure and sweet, but the sand which is on the bank of those rivers is very soft and even has a nice fragrance to it. So growing from the sand on the banks of those rivers is many, many different types of trees and vines, especially trees like Kadamba and Tamalbrix. So those trees have very nice flowers which are perfectly scenting the atmosphere and making everyone very happy. So even there, even though these animals are not here, like snakes and tigers and bears, but still, even if they were, they would lose all their duplicity and anger, and they would reside with all the other animals with great love and affection, like even snakes and deers and tigers would embrace each other. Snakes and mongoose and tigers and deer would forget their natural enmity and become friends, such as the atmosphere of Vrindavan. So there the mrigas, the deers, and the pakshis, the birds, they form their own little groups. So the parrot or the tota, especially the male parrot, he's green in color and has a red nose, a red beak. So they're on the boys and they're on the side of Krishna's group. And the other type of bird are the minors. You know, the little brown ones with the yellow beak, minors. So they're on the side, they're on the side of Srimati Radhika. So the totas, the boy parrots, are describing, oh, Krishna is Madan Mohan. He's so beautiful, he attracts even Cupid himself. But the minors who are on the side of Radharani said, no, no. Only Krishna can attract anyone if Radharani is there, because she is Madan Mohan Mohini. So if Radharani is not there, Krishna is not Madan Mohan, then he is only Madan. So another argument. Then the tortoise say, "Oh, don't you know my Krishna? He lifted Govardhan." And the lion bird say, "No, no. The only reason Krishna could lift Govardhan because Radharani was there, and Radharani gave Shakti inside Krishna. Then Krishna could lift Govardhan. Otherwise, he cannot lift." So then the tortoise try again. "Oh, Krishna is very beautiful. He wears Morukut, peacock feather on his head." And the miner said, "Yes, yes, you know why he wears peacock feather on his head? Because there Radharani's name is there. Therefore Krishna respecting Radharani, keeping on his head very carefully." The tortoise saying, "Yes, but that Morukut is also leaning towards the left-hand side." And the miner said, "Yes, yes, because even the Mukut of Krishna wants to touch the lotus feet of Srimati Radhika." So all these wonderful conversations going on in Vrindavan. Sometimes in Koshi, Krishna goes to Radharani and knocks on the door. "Knock, Kunj. Who is there?" So like the different birds fighting, so sometimes Radha and Krishna also, Radharani cutting off Krishna's arguments. "Who is there?" "Oh, it's Hari." "Oh," Radharani said, "Hari means lion." "Oh, no lions necessary inside my kunj. Otherwise you'll just eat us. Go away, go away." "No, no. I am not that Hari. I am Sri Hari." Sri Hari means monkey. So Radharani said, "Oh, monkey's not necessary in village area. You could go to the jungle." "No, no, I am that Krishna." "Oh, Krishna means black snake. Oh, I want that my black snake in here. Maybe he'll bite me." "No, no, I am Chakri." Chakri means a potter. So in wedding time, many new pots necessary. "Oh, here is no wedding. You can go to another village. Wedding is maybe there." So Krishna never goes from Kalabasi. What does he do? He comes into Vrindavan just to hear all these types of conversations. And he feels very, very happy. So this is only an excuse. So there are many, many types of divine fruits and flowers. So the trees have so many fruits that they become very heavy and their branches bow down to the ground. And the latas also have so many flowers upon them, those latas also reaching down to the ground, appearing to touch the feet of Krishna. So all the gopas and the gopis have very, very sweet voices. So this is the beauty and wonder of Vrindavan. That attraction is so wonderful. Even the demigods have prayed to take birth in Vrindavan. Like Sri Ramaji prayed, "Taburi bhagyam he janmata rade gokalapi katamantri rajobishekam." Ramaji prayed, "Oh, I want to take birth in that Vrindavan, but I think I'm not qualified. So if Krishna gives me mercy, maybe I can take birth in Gokul." "How? If I can take birth as a stone in Gokul, I am very lucky." "Which stone?" "The people who clean the toilets, the bungies, sweep a caste. When they come home after the day's work, their feet are very dirty. So they scrape their feet on one stone." Ramaji is praying, "I want to become a stone in that Gokul."
रुक्मिणी की ये बात सुनकर कंस की माता कहने लगी, "अरे अति बाचाले, अति बाचाले लंबी लंबी बात करने वाली, बाचाले अधिक बोलने वाली, तुम बालिका की तरफ में एक अज्ञानी बालिका की भांति तुम ऐसा ये सब कर रही हो क्यों? अरे यदि ऐसे ही बात है, वृंदावन इतना मधुर है, कोई हिंस प्राणी नहीं है, चोर चोटे नहीं है जो गाय को चोरा ले, तो फिर कृष्ण जब चलाया वहां से ब्रज से तो गाय मर क्यों रही है, बछड़े क्यों मर रहे हैं, क्यों? हमने तो सुना जी ये मर रहे हैं क्यों? और इतने ही सुनते हैं कृष्ण जो है एकदम विचलित हो, उनका मुख सूख गया, और सचमुच में ऐसा हो रहा है क्या? बलदेव जी भी ऐसे कह रहे थे, उद्धव भी ऐसा कर रहा था, ये भी ऐसे कह रहे हैं, और सब चिंता करने लगे। तब सब चीजों को जानने वाले, सब वृंदावन के समस्त संवादों को रखने वाले
बलराम जी की तरफ में मुख देख करके कृष्ण उनके तरफ में देखने लगे। अच्छा तो माने क्या जब बलदेव जी तुम सच सच बतलाओ जी ये कहाँ तप सकते हो, इसलिए बलदेव जी की तरफ में देखने लगे। आप तो ब्रज में हमारे साथ में थे और फिर ब्रज में पीछे से भी गए, आपको सब पता है, अभी हाल ही में वहां जाकर के देख आए हैं, इसलिए संशय करके बलदेव जी से वो पूछने लगे। बलदेव जी ने कहा हे कृष्ण गाय की तो बात ही क्या, वहां के मृग समूह पशु पक्षी मोर पपी है जितने भी पशु पक्षी हैं और भांडी बट कदम्ब आदि के वृक्ष बंशी बट और लता कुंज सभी और तृण मंडित जितने भी मैदान हैं जो कि कृष्ण को ही जीवन समर्पण कर रखा है, आपका आपको जीवन समर्पण कर रखे हैं, वो सब सरोवर सूख रहे हैं, वो पशु पक्षी हिरण मृग इत्यादि सब सचमुच में अब वो आपके विरह में मर रहे हैं, पर्वत भी दिन दिन में क्षीण हो रहे हैं, यमुना नदी भी क्रमशः विरह में सूख रही है, बड़े ये परिताप और दुख की बात है। और भी कहने लगे अभी रात हो गई आज यही तक रहे कल लौट आए गौ प्रेमानंद
Rohini giving all his answers describing the beauty of Vrindavan in answer to Padmavati, the wife of the mother of Kamsa. So when Padmavati heard all the glories of Vrindavan, she said, "Oh Rohini, you are Ati Bacha, when you speak too much. But I think because if Vrindavan is so sweet and so attractive, if there are no thieves there, no jealousy, then how come the cows are dying there? This doesn't make sense." So when Krishna heard this, his mouth dried up completely. He became unconscious. But everyone became drowned in remembering the glories of the Brijvasis and Vrindavan. That time, no one could understand what to do. So everybody turned towards Balaram. Balaram will give the answer. Because Balaram knows Vrindavan. He was with Krishna in Mathura, with Krishna in Dwarka. So Krishna and everybody turned to Baladev. Oh, what will Baladev say? And Baladev said, "Oh Krishna, are only the cows in this position? Even the boar, peacocks, birds, the plants, the trees like the bat trees, like kadamba, like tamals, all the creepers on the kunjas, all the grass in the gardens, all who have given their complete life to you, all are about to leave their bodies. Even all the ponds and Yamuna have become almost completely dry. The mountains are decreasing in size, and Yamuna has become just a trickle. So that only the cows are not in this situation. So now it's very late. Continue to know."